ओम शांति। अभी हम सबके मध्य है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी गीता बहन जी, हम सभी स्वागत करते हैं। तो आप बचपन से ही बाबा के ज्ञान में हैं और बहुत सेवा में उपस्थित रही है। गुजरात के कई सेंटर्स में आपने सेवा दी है, ज्ञान सरोवर में भी लंबे समय के लिए आपने सेवा दी है। वर्तमान अभी आप शांतिवन में हैं और शांतिवन में हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैकल्टी के रूप में सेवा दे रही है। आप जानते हैं कि ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और शांतिवन तीनों में ही कंटिन्यूअस प्रोग्राम्स चलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस चलती है, सेमिनार्स चलते हैं, शिविर चलती है। उन सब के अंदर आप विशेष फैकल्टी के रूप में भिन्न भिन्न विषय पर क्लासेस वगैरह कराते हैं। आप बिजनेस विंग की मधुबन कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो अभी हमें विशेष बहन गीता बहन जी क्लास कराएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है? हैं? मधुबन तो सूक्ष्म वतन बन गया, अब माउंट आबू ही सूक्ष्म वतन बन गया, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें फरिश्ता बनना ही है ना। वातावरण भी सहयोग दे रहा है, बारिश अच्छी हो रही है, फॉग नहीं है पर बारिश तो है। तो बाहर कहीं जा सकते नहीं है कि जाना नहीं है, ये बताओ भाई, जा सकते नहीं है या जाना नहीं है? स्पेशल है मधुबन, दर्शन करने का मौका रह गया है अब तो, और आपको चांस मिला है रहने का, तपस्या करने, तो ये तो गोल्डन चांस है। और चंडीगढ़ को ये दूसरा चांस है, हाँ, डबल चांस मिला है इस बार। पहले भी एक चांस लिया है और सेंटर वाले आए थे, इस बारी ये दूसरा ग्रुप है। टीचर कोई नहीं आए? आए हैं? बहुत अच्छा। वैसे भी आप सभी अच्छे योगी हैं। अचल दीदी ने तपस्या की नींव बहुत पक्की डाली है चंडीगढ़ में। जानती हूँ, पर सब बीज तो अचल दीदी है ना। कुसुम बहन को तो जानती हूँ, सोशल वर्कर थी और बाबा के कार्य में बहुत अच्छे ग्रुप लेकर आती थी, पर बीज तो अचल दीदी है और अमीर चंद भाई जी। शुरू से तपस्या का फाउंडेशन अच्छा रहा है क्योंकि दीदी खुद बहुत एक्यूरेट रही। मधुबन आती थी तो भी इस आयु में भी 6 बजे से क्लास में पहुंच जाते, योग में। हम लोग बाद में पहुंचते होंगे पर वो एकदम राइट टाइम पहुंच जाते, योग का पीरियड अटेंड करते। हम शायद 72 या 73 में आए थे, अमृतसर में पहला सेमिनार था। हम नए नए समर्पित हुए थे 72 में, तो वहां सेमिनार में आए थे, उस समय चंडीगढ़ भी आए थे। हमने जो मॉर्निंग क्लास देखा था, बड़ा लोग अनुशासन से, लाइन से और योगी की तरह अच्छी तरह सब बैठे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अब तो बाबा के कितने भी बड़े घर बनाओ छोटे ही पड़ जाते, क्योंकि बाबा के बच्चों की वृद्धि है। वो समय था शुरू शुरू का, तो सौभाग्यशाली है मधुबन में इस मौसम में। वैसे भी अच्छा लगता है बाबा की याद में शांति से बैठे रहो, है ना। वहां तो क्लास में जाते हैं, ज्यादा समय दे नहीं पाते, है ना, क्योंकि अपना आपका तो डबल रोल है ना, सभी आप कौन से एक्टर है, डबल रोल वाले एक्टर है ना। आपको लौकिक पार्ट भी प्ले करना है, अलौकिक भी प्ले करना है, तो नेचुरली अपना घर गृहस्थी है, नौकरी धंधा है, तो वहां क्लास योग रेगुलर कर सकते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं निकाल सकते। तो स्पेशल जब यहां भट्टी में आते हैं, सभी बातों से फारिग हो, फारिग होकर आए हैं, किसी को जवाबदारी दे के आए होंगे ना, तो निश्चिंत है, मन से भी फारिग है, कि फोन करते रहते, भट्टी के बाद करते हैं ना, रात को करते, ब्रेक आवर्स में करते, मतलब फारिग होकर आए। तो यहाँ मौका है ना, वहां अंदर में ये दिल रहती है कि कभी शांति से बैठ ही नहीं पाते, दिल करे तो भी उठ के जाना पड़ता है, तो अंदर में एक ख्वाहिश रहती है कि कभी शांति से बाबा की याद में बैठे रहे, अंदर से कोई बातें खींचे नहीं, कोई जिम्मेवारी ना हो, तो ये मौका है। बाबा आपको तैयार भोजन दे रहा है ना, कोई नौकरी करने जाना नहीं है, फ्री है ना भाई भी सब, हाँ, माताओं को भी फ्री है, न नौकरी है न भोजन बनाना है। वहां तो हम ये कारण देते हैं ना कि इस कारण योग नहीं लगता है या एकाग्र नहीं होते हैं, यहां आपको पता चलेगा कि रियल कारण क्या है। यहां तो कुछ भी नहीं है ना, फिर भी अगर योग नहीं लगता है या बुद्धि और बातों में जाती है, तो इससे पता चलता है कि कारण और कोई नहीं है। बहाना देने के लिए कारण हम बना देते हैं कि बच्चे के काम इतने हैं, घर के काम इतने हैं, समाज के इतने हैं, नौकरी धंधे के इतने हैं, तो वो विचार आते हैं, पर वो नहीं है तो क्या स्थिति है, क्यों मन जाता है, तो कहां जाता है, ये नोट करना कि कहां बुद्धि जाती है, जबकि काम नहीं है, हम तो छुट्टी लेके आए हैं ना, बांधे ले तो कोई एक दो होंगे, बाकी तो सब छुट्टी लेके आए हैं ना घर परिवार में, तो क्यों मन गया, तो अपने आप को हम चेक कर सकते हैं कि इन बातों में बुद्धि क्यों गई। दूसरा कि उसका क्या समाधान है। बुद्धि जाए नहीं, हम बाबा की याद का आनंद ले सके, समझते हुए भी हम जानते हैं और समझते हैं कि ठीक है निमित्त रोल प्ले करना है, उसकी कोई मना नहीं, ध्यान देना, केयर करना, समाचार पूछना, ये भी रोल है, वो तो आप दिन में या रात को पूछते हैं, पर बट्टी के समय भी अगर हमारी बुद्धि जाती है तो इससे हम महसूस करें कि कई बार हम समझते भी हैं, क्योंकि ज्ञान तो है अब कि देह में, देहधारी में, दैहिक प्रवृत्तियों में, दैहिक पदार्थों में और इस देह की दुनिया में भटकने से कुछ फायदा नहीं है, यह हम समझते हैं, समझते हैं, फिर भी हम मन से क्यों जाते हैं। एक होता है ना कि आदत पड़ी हुई है, जन्मों की आदत पड़ी हुई है, जैसे छुट्टी का दिन है, कोई काम नहीं होगा तो भी भाई कहेंगे कि आता हूं बाहर जाके क्यों, कोई काम तो नहीं है, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, दुकान जाने की बात नहीं है, पर बैठ नहीं सकते हैं ना, आदत पड़ी है, हमें कोई काम नहीं होगा तो भी पड़ोस में क्या है, अरे हमारा कोई रोल ही नहीं है इसमें, हमारे आपसी संगठन में भी ऐसा होता है, हम जिम्मेवार नहीं हैं तो भी कई बातों में बुद्धि माथा मारते हैं। तो ये मौका है अपने आप को समझाने का, खुद के साथ बैठने का। दो मूल चीजें, मैं कौन और मेरा कौन, ये दो बातें हमने समझ ली है, उसको अच्छी तरह रियलाइज कर लेनी है कि मैं कौन हूं, क्योंकि तभी बुद्धि सही निर्णय हमें देगी कि हमें क्या करना है। बाबा ने पहला ही पाठ वो पढ़ाया, आध्यात्मिकता की शुरुआत ही स्वयं से, और उसकी संपन्नता भी स्वयं की संपूर्णता से। तो खुद को महसूस करना कि सच में मैं कौन हूं, आत्मिक रूप से कौन हूं, क्या अलौकिक संबंध से क्या हूं, मैं आत्मा हूं, ईश्वरीय संतान हूं, मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, मैं एक शक्ति। शक्ति ज्योति, मैं एक सत्य हूं। आज भी बाबा ने मुरली का हेडलाइन क्या था कि मैं शुद्ध आत्मा, बाबा कहता है देखो अपने आप को कितना शुद्ध बने, और जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी होगी। बहुत बड़ी चीज बाबा ने कही। दादियां अपने अनुभव में सुनाती हैं कि यज्ञ के आरंभ में हम घंटों इसी नशे में बैठे रहते थे कि मैं शुद्ध आत्मा, हमें आश्चर्य होता था कि घंटों इस एक बात में, अच्छा इसमें नशे की तो कोई बात ही नहीं लगती है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, बड़ा आश्चर्य लगता है। पर जैसे जैसे हम शुद्ध बनते जाते हैं तो महसूस होता है कि हमें अपने स्वरूप में ही आनंद आता है। जब चाहे खुद के स्वरूप में स्थित हो जाए, हमारा सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप, हमें खुद में खुशी, और बाबा ने कहा, बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, बाबा मेरे में ये भूत है, हम सब बताते हैं ना बाबा को, तो मन से भी बताते हैं, बाबा को पत्र भी लिखते हैं। दो महावाक्य बाबा ने आज जो बोले कितने अच्छे, उसी के साथ बाबा ने कहा एक कि ये तो फिकर की बात हुई कि तुम्हारे में भूत है, ये तो फिकर की बात हुई, ये तो फिकर की बात हुई, खुद को ये महसूस हो कि अगर मेरे में कोई भी कमजोरी है, कोई भी विकार है, तो ये कॉमन बात नहीं है, फिकर की बात, क्योंकि जिसका लक्ष्य है सतो प्रधान बनने का, संपूर्ण निर्विकारी बनने का, वो तो महसूस करेगा ना कि ये तो फिकर की बात है। हमें लगता है कि फिकर की बात है, एक भी कमजोरी क्यों रहनी चाहिए। बाबा कहता है एक कमजोरी भी तुम्हें समय पर फेल कर देंगी, एक छोटा सा छेद नाव को ले डूबेगी, और दूसरा बाबा का महावाक्य कि अंदर में खराबी है तो दिल खाती है, माना जब तक मुझ आत्मा में अशुद्धि है तो निरंतर सुख चैन की स्थिति बन नहीं सकती, दिल खाएगा। और जहां दिल खाता है, जिस भी बात में दिल खाता है, उस क्षण चेहरे की अलौकिकता खत्म हो जाती। अंदर से दिल खाना माना गुनहगार है ना, कुछ गलत करते हैं तो दिल खाता है ना। तो बाबा कहता है अंदर में खराबी है तो दिल तो खाती है ना। ये महसूस होना चाहिए, संगम युग में हम हर आत्मा का कर्तव्य है बाप समान बनना, बल्कि हम हर आत्मा को ये अधिकार है हम संपूर्ण बन सकते। भक्ति में तो ये चीज ही नहीं थी, कोई सोच ही नहीं सकता था। वहां तो कितनी लिमिटेशंस, इस मंदिर में ये नहीं जा सकते, ये पूजा माताएं नहीं कर सकती, ये फलाना नहीं कर सकता। तुम तो चरण में आओ, शरण में आओ, बस तुम महान बन सकते हो, ये कोई कहता ही नहीं। स्वमान ही तोड़ देते ना, जिसका स्वमान खत्म हो गया वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो भक्ति में ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने पहले ही क्या किया, गृहस्थियों के स्वमान तोड़ दिए। जन्मों के पुण्य हो तो योगी बन सकते हैं, ऐसे कहते। और बाबा ने हरेक को योगी बनाए, पुण्य हो तो योगी ही है ना, बनने की बात कहां रे। वो कहते पुण्य हो तो बन सकते हैं, बनने की बात ही नहीं है ना, वो तो योगी ही है, फिर तप किस लिए है। तप तो है ही पापों को भस्म करने के लिए। बाबा ने हरेक को योगी बनाया, हरेक को वारिस बनाया, हर आत्मा को हक है संपूर्ण वर्षा लेने, बाप समान बनने। कभी बाबा ने कहा कि समर्पित ही बन सकते, मधुबन निवासी ही बन सकते, ऐसे कहा। हरेक आत्मा बन सकते, मधुबन रहो, सेंटर रहो, घर में रहो, गांव में रहो, कहीं भी रहो, हरेक आत्मा बन सकते। बाबा ने अधिकार दिया, अब है हमारी अपनी लगन, हमारा अपना पुरुषार्थ। आत्मिक रूप में हम ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, चैतन्य है। अलौकिक जीवन में हम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हैं। कितने टाइटल बाबा ने दिए, कितने स्वमान बाबा ने दिए। महसूस करना, बाबा ऐसे ही कोई महिमा नहीं कर रहा, कई सोचते हैं बाबा ऐसे ही नशा चढ़ा रहे, क्यों ऐसे ही बाबा चढ़ाएगा, क्या जरूरत है बाबा को। हर एक आत्मा को बाबा ऊंच उठाना चाहता है, और हम सब जानते हैं कि जो कल पहले बने थे वो ही यहां फिर आएंगे बनने के लिए, तभी तो बाबा इतने टाइटल देते। पर खुद को ये समझना, महसूस करना कि हम सामान्य नहीं हैं, हम बहुत विशेष आत्मा है। कल की मुरली में क्या कहा बाबा, हाँ विशेष आत्माएं हो, आधार मूर्त आत्माएं, पुण्यात्मा हो, पुरुषोत्तम देवात्मा हो, हाँ। जो अपने आप को ये महसूस करेगा वो कोई भी साधारण कर्म कर सकेगा, हाँ? न साधारण विचार आएंगे, न साधारण चलन हमारी बनेगी। साधारण विचार तब आते हैं जब हम अपने स्वमान में स्थित रहे। स्वमान कोई रटने की चीज नहीं है, कोई 10 बार लिखने की चीज नहीं है, महसूस कर हम ये हैं, और हमें ही फिर बनना। बाबा कहते भी है कई बार अव्यक्त मुरली में कि तुम ही तो थे, कल्प कल्प तुमने ही तो विजय पाए हैं, अभी भी तुम्हें ही पानी है, फिर क्यों नाज नखरा करते। कहते हैं ना बाबा, हाँ फिर क्यों खेल दिखाते। अपने को महसूस कर, भल शरीर साधारण है, संसार में हम साधारण स्थिति में, पर मैं आत्मा इस पुराने शरीर में रहते हुए मैं आत्मा तो नई बन रही हूं, दिव्य बन रही हूं। तो नाम रूप साधारण देखकर खुद को साधारण स्थिति में रख लेना, तो बाबा कहता है ना ये तो दे अभिमान हो गया। स्थिति क्यों साधारण बन जाए, हम अपनी ऊंचाई से नीचे उतरे क्यों। तो मैं कौन, क्यों इसको पहली कहा जाता है कि मैं कौन, इस पहली को बुझाओ। क्योंकि जितना खुद को हम महसूस करेंगे अपने आप कर्म श्रेष्ठ होने लगते। और मेरा कौन दूसरा, मेरा कौन है। लौकिक दुनिया में भी बुद्धि में क्या रहता है, हम इस जाति के हैं, इस कुल के हैं, इस खानदान के हैं, वही नशा होता है। इतिहास क्या बताता है? राजपूतों के युद्ध होते थे, वो भाटचारण क्या करते थे? नशा चढ़ाते थे, तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे कुर्बान हो गए थे। उनको याद दिलाते ताकि उसमें जोम आ जाए कि पूरी ताकत से युद्ध करना। हमें भी पूरी ताकत से पुरुषार्थ करना, मजबूरी से नहीं, ढीला ढाला नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया है ना कि हम कौन है और हमारा कौन है। मेरा कौन है? दुनिया में व्यक्ति वही सोचता है, खुद कितने भी साधारण होंगे, कमजोर होंगे, पर रिलेशन कोई पावरफुल व्यक्ति से होगा तो नशा रखते हैं ना। हमने देखा कई बार बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे आपस में खेलते हैं और मान लो लड़ते भी है ना, झगड़ते भी, रोता भी जाएगा, भागता भी जाएगा, पर कहेगा देखना मेरे पापा को बता दूंगा, देखना तेरे को मेरा पापा ठीक कर देगा, देखना मेरा भाई को बता दूंगा, मेरा भाई तेरे को ठीक कर दे। खुद में दम नहीं, खुद भाग रहा है, रो भी रहा है, पर भाई पावरफुल है, बाप पावरफुल है तो डरा रहा है। चलो हम अंतिम जन्म में साधारण बन गए, पर चलो फिर भी, पर मेरा कौन है? अब हमारे रिलेशन कनेक्शन किसके साथ? तो ये तो कितना फखूर की बात है ना, नशे की बात, कितनी शक्ति की बात हो गई कि कितनी बड़ी अथॉरिटी हमारी बैकबोन है। हम अकेले नहीं हैं, स्वयं भगवान हमारा साथी है। ये सिर्फ बात नहीं है, सत्य है कि जहां हम याद करते हैं वहां बाबा हमारे साथ है कि नहीं? हाँ, बाबा कहते हैं जहां मैं वहां तुम बच्चे, पर जहां तुम याद करो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। याद करो तो, तुम ही भूल जाओ तो मैं कैसे साथ आ सकता? तो हम याद करते हैं और वो हमारे साथ है। बाबा शब्द ही जादू है, खजानों की चाबी है। पर हम याद करें और सारी शक्ति जो है वो स्मृति की है, स्मृति की है ना। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद। ये बाबा का वाक्य है, महावाक्य। याद है तो आबाद है, पावर रहती है। सारा खेल तो स्मृति और विस्मृति का है ना। और संगम युग किसका खेल है? स्मृति का। बाकी पूरा ड्रामा विस्मृति का है। अभी तो वो याद रहे ना। कई कहते हैं मेरा तो बाबा के सिवाय और कोई नहीं, पर वो दुख से कहते मेरा तो बाबा के से कोई है ही नहीं। ये दुख की बात है या खुशी की बात, क्योंकि उनको अभी भी अफसोस है, बाबा तो है पर ये कोई मेरा नहीं है, वो अफसोस अंदर अभी भी छिपा हुआ है, बाबा के सिवाय कौन मेरा है। अरे ये रोते हुए थोड़ी बोलना है, बाबा मेरा है। किसी और को अपना बनाने की बात ही नहीं है। अब कौन मिला है ये सोचना, मुझे ऐसे मिले वैसे मिले, उसी का दुख याद करते रहे, मुझे जीवन में ये नहीं मिला, अब कौन मिला है वो याद करना है ना, अब कौन मिला। हर क्षण हर स्थान कौन साथी बन सकता है, बाबा ही बन सकता है, और कोई तो बन ही नहीं सकता है ना, फिर आश क्यों लगाना है। कोई भी देहधारी हर क्षण साथी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो देह की लिमिट में है, तो कुछ क्षण उससे खाने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, सोने के लिए चाहिए। अच्छा इस ड्रामा में एक्टर बना है तो और भी तो रिलेशन है, वो कोई सिर्फ मेरा ही है क्या, वो थोड़ा माँ का है, पिता का है, मित्र का है, मेरा है, ऑफिस का है, कितने रोल में हम बंधे हैं। और मैं कहूं कि ये मेरा, ये कैसे हो सकता है, हमारी आशाएं और इच्छाएं गलत है ना, हमें तो समझना है ना हर आत्मा के पार्ट को। जो हर क्षण हर स्थान हमारा हो सकता है उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। चलो अब तो मिला ना, और उसने ऑफर किया, ऑफर किया है ना कि तुमको जब मदद चाहिए मैं हाजिर, उसने तो ऑफर किया है। तो अगर ये दो महसूसता गहरी हो, स्पष्ट हो, यथार्थ हो, मैं कौन हूं और मेरा कौन, तो मुझे क्या करना है वो अपने आप स्पष्ट हो जाए। अपने कर्म का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान अपने आप क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो स्पष्ट हो जाता है। दुनिया में भी जिसको लौकिक रूप से भी ये जागृति रहती है तो वो समझते हैं ना कि भी हम इस कुल के हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है, हम राजपूत हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे समाज में ऐसा नहीं चलता है, हम तो इस खानदान के हैं, हम ऐसे रास्ते में खड़े नहीं रह सकते। हर एक को होता है ना अपने आप कर्तव्य का भान आता है। जब हमें ये महसूसता होगी तो अपने आप हमें समझ में आता है। हमें पूछने की दरकार नहीं रही, हमें कोई कुछ कहे, सिखाए, रोके, टोके जरूरत ही नहीं। खुद को ही सद्विवेक आ जाता है कि बाबा के बच्चे होने के नाते और संगम के इस समय, दो चीज, ये समय आप देखो, पूरा ड्रामा का तो कोई मतलब ही नहीं। दो युग तो प्रारब्ध ही है, वहां कुछ करने की बात ही नहीं है ना, वो तो प्रारब्ध है। संगम के पुरुषार्थ का फल है वो तो। अच्छा, बाकी के दो युग संगम की यादगार है, भक्ति है, रस्म रिवाज है। जो कुछ प्रैक्टिकल करना है वो संगम युग में कर। माना मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो अभी का समय है, बाकी पूरा ड्रामा तो क्या है, वो तो ऐसे ही चलना है। पहले संगम की प्रारब्ध भोगेंगे दो युग, और दो युग उतरेंगे और रस में रिवाज करते रहेंगे। अभी ज्योति जगाकर बैठते हैं, वहां दीवा जलाते रहेंगे। हर यादगार देख लो, जो हमने संगम में पुरुषार्थ किया उसी की यादगार करते रहेंगे। करने का सोच समझ कर करने का समय तो यही है, वो तो यही है ना। तभी बाबा कहते हैं कि अब गफलत में नहीं रहे। अब तक रहे ड्रामा बिंदु, बाबा कहते हैं वो तो ज्ञानी नहीं था, उसकी कोई सजा नहीं, जो हुआ ड्रामा। अब गफलत नहीं कर, ये समय कौन सा है, ये दो चीज बुद्धि में रखनी है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये क्लियर है। अब विवेक से निर्णय करना है ये समय कौन सा है, वो भी स्पष्ट है। अब मुझे क्या करना, जो कुछ प्रैक्टिकल करना है वो अभी करना, पुरुषार्थ अभी ही कर सकते। बाबा कहते हैं ना, अगर ये याद रहेगा तो बचपन के खेल नहीं दिखाएंगे, रोना, रुसना, रुठना, लड़ना, मूड ऑफ करना, आलस करना, ये तो बचपन के खेल है। सेंसिबल और रेस्पॉन्सिबल तो ऐसा करेगा ही नहीं। हम कौन हैं? सेंसिबल और रेस्पॉन्सिबल। हम वारिस हैं पर जिम्मेवार भी। भगवान के वर्षे के वारिसदार है तो भगवान के कर्तव्य के जिम्मेवार भी तो है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म होते ही जिम्मेवारी का तिलक बाबा लगा देता है। बाबा ने एक बार कहा था एक पार्टी मुलाकात कि कलयुग में बच्चा पैदा होता है और किसी की बुरी नजर न लगे इसलिए माताएं क्या करती है करती है बाबा ने कहा कलयुग है इसलिए काला तिलक लगाती है माया की नजर न लगे इसलिए बाबा जिम्मेवारी का तिलक लगाते ब्राह्मण बने ना ब्रह्मा मुख वंशावली हम बने हैं नया जन्म हमारा हुआ है ना हाँ हुआ है हो गया है ना पक्का पवित्र बनना माना ब्राह्मण तब नया जन्म कहते पवित्रता नहीं तो शूद्र है पवित्रता की धारणा हुई माना हम ब्राह्मण बने ना हमारा अलौकिक जन्म हुआ तो हम जिम्मेवार भी बाबा ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य क्या है बाप समान बन के दिखाना बाप को फॉलो करना सबसे पहली बात ब्राह्मण किसको बाबा कहते ब्रह्मा बाप को फॉलो करने दो चीज बाबा बताते हैं ना ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी ब्रह्मचारी तो है हम सब तभी ब्राह्मण जन्म शुरू हुआ पर ब्राह्मण जीवन में क्या करना है कदम कदम ब्रह्माचारी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना ये पुरुषार्थ कि ब्रह्मा बाप को देखना है और ब्रह्मा बाप को फॉलो करना हम ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है ये हमारा कर्तव्य है कहने की आवश्यकता क्यों पड़े ब्रह्मा बाप ने क्या किया जानते हो ना सभी अच्छी तरह स्टडी किया है ना आजकल तो कितनी बुक्स बन गई चलो वो दादियां नहीं रही कम हो गई पर बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है हा? शुरू से बाबा ने क्या किया आदि में स्थापना का कार्य कैसे बन जीवन कहानी की दो किताब है पढ़ी है ना अच्छा उसके बाद हर दादियों के अनुभव है बाबा के संग के यज्ञ के आदि के फिर जिन्होंने साकार में पालना ली बाबा की उन सबके अनुभवों की किताबें बनी है इन आंखों से देखने की बात नहीं पर विवेक की आंख से तो बाबा को देखा है ना तो फॉलो कर सकते हैं ना कर सकते हैं ना और ब्रह्मा बाबा क्या था ब्रह्मा बाबा के हम जिन्स तो आप सब है बाबा तो ग्रस्ती था ना बाबा के हम जिन्स तो आप सब है हम मम्मा के हम जिन्स है कुमारियां पर बाबा और मम्मा हमारे सामने स्पष्ट है ना हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि हमने बाबा को देखा नहीं तो हम फॉलो कैसे करें, ऐसा कहेंगे? हाँ, नहीं कहेंगे। तो ब्राह्मण जीवन में हमें हर हमेश ये याद रहे कि बाबा को देखना है, बाबा को फॉलो करना। बहुत छोटी छोटी बात में अटेंशन देंगे तो पता चलेगा, आपके ध्यान पर आएगा कि कितनी सामान्य बातों में हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को फॉलो करते रहते हैं आपस में ही, जबकि आपस में हम सब तो पुरुषार्थी है, नंबरवार है, परफेक्ट तो माँ बाप ही है हमारे, बाबा और मम्मा। फॉलो किसको करना चाहिए, आधे अधूरे को या परफेक्ट को? और हम कई बातों में क्या करते, पुराने ऐसे हैं, समर्पित ऐसे हैं, मधुबन वाले ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं, क्यों हम क्यों दूसरों को देखना है? चलो दुनिया में, आज दुनिया में कोई रोल मॉडल नहीं, उनके सामने कोई आदर्श नहीं, जो उनके माता पिता, शिक्षक, जो भी उनके बुजुर्ग, समाज के नेता, अग्रगणी जो भी है, सब कलयुग के अंत के तमो प्रधान। पर हमारे सामने तो है ना बाबा मम्मा, दादियां, और बाबा कहता है ना फॉलो ही करना है ना, कॉपी ही करना है ना। कॉपी करना तो बाबा कहता आसान है ना, कोई बुद्धि तो चलानी नहीं, बुद्धि तो चला ली ना पहले, परख लिया ना बाबा को, बाबा को तो परख लिया ना, सत्य को परख लिया। हाँ, भाइयों का जवाब नहीं आ रहा है, सत्य को परख लिया ना हम सब ने, सत्य को पाने के बाद भटकना समाप्त, भटकना समाप्त। अब तो जो सत्य मिला है उसी में एकाग्र रहना, हम दुनिया के आगे निमित्त सेवा के लिए बाबा के तरफ से निमित्त है। कोई कहां, कोई कहां, सारा ब्राह्मण परिवार दो युग साथ रहे, देवात्माएं आज सारे विश्व में बिखर गए हैं, किस लिए? सबका कल्याण करने के। कोई कहा, कोई कहा, कोई कहा, क्यों? क्योंकि कोई एक निमित्त होगा बाबा का बच्चा, वो क्या करेगा, अनेकों का कल्याण करेगा। विदेश में जाते हैं, कहां कहां एक 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 बैठे हुए हैं बाबा के बच्चे, एक एक देश में एक एक बैठा हुआ है। हम लगभग 25 वर्ष पहले एक बार पहले अमेरिका जब गए, शिकागो गए थे, तो वो सेंटर वाली बहन ने कहा कि आप मॉर्निंग क्लास कराना। तो हम तैयार होके बैठे, तो मैंने कहा कि मुझे कहा कि आप क्लास कराओ, पर कोई बैठा ही नहीं था। मैंने कहा किसको क्लास करो? कहते नहीं नहीं आप कराओ, वो सब स्काइपे पर सुन रहे, क्योंकि कोई 200-400 माइल 100 माइल 500 माइल दूर है, कहां कहां एक 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 कैसे 10-15 जो भी। कहते वो अभी सब अपना लगा के बैठे हैं, आप क्लास करो। तब मुझे हुआ कि ब्राह्मण परिवार की कितनी वैल्यू है, वो बहन अकेली कैसे पुरुषार्थ कर रहे, और वो सारे स्टूडेंट भी एक एक। ये सत्य है। पर क्यों कोई कहां कहां कहां? क्योंकि आपके निमित्त अनेक की ज्योत वहां जगा ली। मधुबन में सब एक ही जगह हम साथ रहे तो विश्व का कल्याण कौन करेगा? जो जहां है विश्व के आगे हम निमित्त है, हम बाबा के रिप्रेजेंटेटिव है। आते हैं ना अलग अलग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना, वो क्या करते हैं? अपनी कंपनी का माल बेचने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो हम बाबा के रिप्रेजेंटेटिव, बहुत बड़ी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, अच्छी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कितने अप टू डेट आते हैं और अपने सामान का कितनी महिमा करते। कला होती है ना, देखे ही जाएंगे आपके, कुछ ना कुछ देखे जाएंगे सब। हम तो भगवान की कंपनी के लोग, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, और भगवान का माल दुनिया के आगे रखना, जो बाबा की प्रोडक्ट है वो दुनिया में और कोई के पास मिलेगी? हाँ नहीं मिलेगी। तो हमें तो कितना नशा होता चाहिए कि हमारे पास वो खजाना है जो किसी के पास नहीं। हाँ। और कितना ना नुकर करे, हमें पता है कि हमारा माल लेना ही पड़ेगा, आज नहीं कल आना ही पड़ेगा। इतना सत्य है कि इसके बिगर चलेगा। तो हम निमित्त है दुनिया के आगे, अगर वो भी हम महसूस करें तो हमारा कर्म साधारण हो नहीं सकता है, हम ढीले कच्चे हो नहीं सकते। क्योंकि करेगा वो पाएगा। बाबा ने माल दे दिया, बाकी प्राप्ति का आधार कर्म, भाग्य का आधार कर्म है। जो सोचेगा वो पाएगा, ये नियम नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े आइडिया बनाए सेवा के, इससे नहीं होगा। जो करेगा वो पाएगा। प्रैक्टिकल हम कितना करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना बाबा को याद करते हैं, कितनी धारणा करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। कर्म से हिसाब बनता है। ये करने का युग है, कर्म के बीज बोने का युग है। बातें नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। हम जो त्याग करेंगे, जो तपस्या करेंगे, जो सेवा करेंगे, जो सहयोग करेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, जो निश्चय करेंगे, जो अवस्था बनाएंगे, जो करेंगे वो पाना है, उसका फल पाना। बाकी तो रास्ता बाबा ने सबको बताया। हमारा फर्ज कर्तव्य है दुनिया के आगे आदर्श बन के दिखा। बाबा कहते ना, आपके चेहरे और चलन से पता चलेगा ना कि ये किसकी रचना है, इनको पढ़ाने वाला कौन है। वो कहें कि ये तो देवी और देवता है। हम जानते हैं कल पहले वाले हम ही देवी देवता है और ये सत्य है, पर कोई मानता नहीं है। बड़ा विचित्र, क्योंकि वो चाहिए ना, वो दीदार चाहिए, तो बड़ा विचित्र लगता है कि यही हम ही है और कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा। पर बनते हैं तो लोग महसूस करते, अवस्था से महसूस कर। ये समय स्थिति बनाने, अवस्था बनाने। अगर उसमें व्यस्त हैं तो हमें फुर्सत ही नहीं है टाइम वेस्ट कर। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है देखने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो खुद कोई अभी स्थित करना है। अपनी तो मूर्ति बन जाए, पहले हम तो फिक्स हो जाए, फिर औरों का सोचेंगे। संदेश तो दे दिया, अब है बैक टू सेल्फ, खुद की स्थिति में आ जाओ, अपनी अवस्था के लिए अटेंशन दे। तो ये रोज दादी 3 बार क्यों ओम शांति बुलाती है? दादी जानकी कहती है मैं 3 बार बोलती हूँ और ये 3 बात सिखाते, क्योंकि यही सार है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है। जिसको खुद के कर्तव्य का बोध है, अवेयरनेस है, उनको कोई प्रश्न ही नहीं। तो गहराई से महसूस करना। 3 दिन का प्रोग्राम है ना आपका। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद।
ओ बाबा तुम सावनना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुम सावनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
ओम शांति। गीता बहन जी का बहुत 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 धन्यवाद।